क्यों यहां कोई किसी से बात नहीं कर रहा? मुझे किसी से बात करनी है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।
तुम्हें क्यों डर लग रहा है? क्यों डर रहे हो?
क्योंकि मैं मर चुका हूं।
मौत तो सबको आनी है, फिर मौत से डर कैसा? अगर किसी गुनाह के मुर्तकिब न हुए हो।
गुनाह? गुनाह? हाँ, मैंने बहुत गुनाह किए।
अगर बता देने से तुम्हें सुकून मिल सकता है तो आराम से बैठ जाओ। अब बोलो, तुमने ऐसा क्या कर दिया?
लंबी कहानी है, कहां से शुरू करूं?
मैं भी चाहती हूं कि अपने साथ होने वाली घटना किसी को बताओ।
मैं भी बताना चाहता हूं।
मैं भी बताना चाहता हूं।
हमारे साथ क्या हुआ है?
कैसे बताऊं कि मेरी हालत तो? मैं भी बताना चाहती हूं। सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे मौत।
बेहतर होगा आप सभी यहाँ आ जाए। और आगे आ जाएं, और आगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हो?
नहीं मालूम कहां से शुरू करूं। मैंने हराम खाया और कमाया। अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, गो के मैं हक पर था। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, मेरा जमीर मुझे कचोके लगा रहा है। शदीद एहसास गुनाह में मुब्तिला हूं।
Thank you.
कियान, डॉक्टर मलिक कियान, प्लीज आईसीयू में तशरीफ लाएं।
अब इसकी हालत कैसी है?
वैसी ही है।
मेरा ख्याल है कि आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी आपकी यहां कोई जरूरत नहीं।
तो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करता था, लेकिन मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं होता था। उसके पापा खुदा बख्शे जल्दी फौत हो गए। मैं भी हमेशा स्कूल और स्कूल के बच्चों में मसरूफ रही, कभी उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाई। मेरा सरोश हमेशा तन्हा रहा।
हाँ याद है मुझे,
बहुत तन्हा।
अलबत्ता सरोश के यार दोस्त बहुत थे, वो बहुत मिलनसार था। मुझे याद है जब कभी हमारा खेलने को दिल चाहता तो वो दबे पांव आकर आपके बैग से हॉल की चाबी निकालता था और फिर हम सब मिलकर खूब मजे से पिंग पोंग खेला करते थे।
बेचारा मेरा सरोश, मैं उसकी इन हरकतों पे कितना बुरा भला कहा करती थी। मेरे बच्चे ने कभी कोई खुशी नहीं देखी।
अब आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह।
अगर यहाँ उसका इलाज मुमकिन ना हुआ तो मेरा एक दोस्त मेडिकल बोर्ड में है, वो स्पेशलिस्ट है, हम उससे रब्ता करेंगे। अरे हाँ, वो याद आया, वो सरोज की इंश्योरेंस बुक चाहिए, वो यहाँ रिसेप्शन पर जमा करवानी है।
बेटा ये जहमत भी तुम खुद ही कर लो।
अगर आप खुद चली जाती तो बेहतर था, इसी बहाने आप आराम भी कर लेती।
नहीं बेटा, तुम जाओ, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके कबर्ड में रखे हुए।
तो ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिलहाल खुदा हाफिज।
खुदा निगेबान, बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो फराह मर्ज। सलाम, मसूद हूँ मैं, मसूद राजी भाई, करामती का पार्टनर। हाँ मतलब नहीं, उसकी हालत काफी तश्वीशनाक है, वो गया कोमा में। सुनो मुझे तुमसे कुछ काम है। जाली,
अफसोस है कि करामती साहब फिलहाल तशरीफ नहीं ला सकेंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
लेकिन कल मगरिब के वक्त तक तो वो मेरे पास थे, उनकी तबीयत भी नासाज नहीं थी, अलबत्ता वो कुछ परेशान थे। खुदा ने चाहा तो उन्हें इस मर्ज से भी और दीगर तमाम मुश्किलात से भी जल्द निजात मिल जाएगी। दरअसल ये चेक उन्होंने कल रात मुझे हमारी मस्जिद के संदूक खैरिया के लिए दिया था, लेकिन सच पूछे तो मैंने बहुत सोचा कि चेक आखिर उन्होंने मेरे नाम क्यों लिखा। तो समझ में ये आया कि वो किसी अर्जुमंदी साहब की तलाश में थे। वो अर्जुमंदी साहब हैं और मैं अर्जुमंद, इसलिए मैं ये चेक उनकी खिदमत में वापस लाया हूँ। वो खुद जिस तरह मुनासिब समझें इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। ये चेक आपके पास उनकी अमानत है। इंशाल्लाह कि जब उनकी तबीयत बहाल हो जाए और अगर वो हमारे संदूक खैरिया की नजर करना चाहें तो ये हमारा अकाउंट नंबर है। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज हाजी साहब। अली जी, देखा 50 लाख इन हाजी साहब की मदद के लिए दिए गए हैं। आखिर ऐसी मदद का फायदा? भला जिस शख्स के पास अपनी जाती गाड़ी हो उसकी माली हालत भी अच्छी होगी। लेकिन मैं बदबख्त जब भी इनसे 20 लाख बतौर कर्ज मांगता हूं तो इनकी जान निकलती है। भाई ये कान ऊंचा सुनता है और ये हालत भी खराब है। 15,000 तो इस आले का खर्च है जो मैं अपने कान में डालता हूं।
तुम तो माशाल्लाह अच्छा खासा सुन लेते हो, दूसरों की सारी ही बातें सुन लेते हो। बेहतर है कि आज जाके नया आला खरीद लेना।
नया आला समाज खरीदने की बात करता हूँ, कोई अपने फायदे के लिए तो नहीं, आप लोगों ही के लिए कहता हूँ। सलाम साहब,
ये दरवाजा क्यों लॉक है?
करामती साहब का हुक्म है कि जब वो कंपनी में मौजूद ना हो तो उनका रूम लॉक रखा जाए। आपको याद नहीं उन्होंने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका रूम लॉक रखा जाए?
इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं और मैं हर किसी नहीं हूँ, उनका बिजनेस पार्टनर हूँ मैं। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, करामती साहब कैसे हैं?
मिस साहब के दरवाजा खोलें और इन साहब से कहें कि दफा हो जाए यहाँ से। कोई भी ऑफिस आए आप वापस कर देंगी, टेलीफोन आए आप रिसीव नहीं करेंगी। अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो मैं नहीं हूं, समझ गई?
जी सर।
किससे पूछकर तुम अंदर दाखिल हुए हो? हाँ
राधे साहब, आप चाय लाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत तो नहीं होती ना? माफ कीजिएगा राधे साहब, मुझे आपसे छोटा सा काम था।
अपना छोटा सा काम जल्दी बताएं और जाएं यहाँ से।
देश आला समाज को सही करवाने के लिए कुछ रकम चाहिए। अल्लाह बख्शे करामती साहब ने इंतकाल से पहले इसके लिए कर्ज देने का वादा किया था।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो नहीं आए तो तुमने उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। और वैसे भी कंपनी के जो हालात चल रहे हैं उनमें किसी कर्जे की तवक्को मत रखना मुझसे, और यहाँ खड़े रहने से बेहतर है जाओ जाके अपना किचन संभालो, खाना पकाओ, झाड़ू दो, वो क्या कहते हैं उसे, सफाई सुथराई करो। जाओ, मैंने कहा जाओ, मैंने कहा जाओ।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ कैसे आई बेटा?
बाबा के साथ आई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी डॉक्टर साहब।
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बच्ची से भी माफ़ी मांगी।
बहरहाल मुझे आपसे कहीं ज्यादा अच्छाई की तवक्को है।
आप ठीक कह रही हैं।
लहजान जी, आप लोगों को यहाँ का किसने बताया?
हम स्कूल गए तो वहाँ आपके बेटे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपके बेटे के लिए कुछ कर सकूँ। मेरे एक दोस्त इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, मैं अभी इनसे आपके बेटे के बारे में बात करता हूँ, परेशान ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। अलिया जान
जी,
आपके पापा बहुत अच्छे हैं, वो एक डॉक्टर हैं। उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। आप मुझसे वादा करें कि आप अपने पापा को तंग नहीं करेंगी।
अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी बेटी की केस हिस्ट्री देखूं।
आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तो मेरा फर्ज था।
खुदा हाफिज मैडम।
खुदा हाफिज बेटा।
ये लो अब बाकी काम तुम्हारा।
अगर वो होश में आ गया तो?
नामुमकिन है, उसकी हालत बहुत नाजुक है।
देखो मैं एक जालसाज हूँ, चोरी करता हूँ, लेकिन नमक हराम नहीं हूँ मैं।
अच्छा, बंदा चोरी करे नमक हरामी ना करे, बात समझ में नहीं आई। आखिर बंदा है खुदा, चोरी में हराम हलाल नहीं होता, बेईमानी बेईमानी होती है।
मैंने सरोज का नमक खाया है, वो मेरा मालिक है। इंसान अपने मालिक के साथ तो खयानत नहीं करता ना।
अच्छा, तो उस वक्त जब तुम दोनों ने मेरे पैसे हड़प किए थे तो क्या वो कमीनगी नहीं थी?
तुम हमारे यार नहीं थे, सरोज अपना यार है।
सरोज को अब भूल जाओ।
ठीक है, मैं शेयर तुम्हारे नाम पर मुंतकिल कर दूंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बगैर ये किसी काम के नहीं होंगे।
तो ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन कराओ।
और अगर कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए इंक्वायरी करवाई गई तो सारी जिंदगी हम दोनों जेल में सड़ेंगे।
तो फिर क्या करना चाहिए?
कुछ नहीं, हम उसे भी टोपी पहना देंगे, जाली शनाख्ती कार्ड, जाली इंक्वायरी करवाना, कोई मुश्किल काम नहीं।
अगर किसी को पता चल गया तो?
अरे नहीं पता चलेगा भाई, मैं अपने काम में माहिर हूँ।
तुम जानो, मैंने तो बस तुम्हें पैसे देने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, बाकी काम तुम खुद जानो। वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा।
बिल्कुल भी नहीं,
मैं तो बस अपनी रकम वापस चाहता हूँ जो मैंने अपने बाप की दुकान बेचकर इस कंपनी में लगाई।
तुम्हारे बाप की दुकान?
हाँ, खुदा उनकी मगफरत करे, उनकी करियाना की दुकान थी यही चौरंगी पर।
मुश्तबा?
हाँ,
मुश्तबा तुम्हारा बाप था।
क्यों, क्या हुआ?
बड़ा सादा लो आदमी था, मैंने उसको बड़ी टोपियां कराई थी, कई बार दुकान का सफाया कर चुका हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मालंग।
अच्छा, तो तुम पुराने खिलाड़ी हो?
नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, वो तो बचपन की शरारतें थी। हम हराम नहीं खाते, काम करते हैं और उसके पैसे लेते हैं। हमारा काम भी बिल्कुल माहिर फोटोग्राफर की तरह होता है। तुमने तो अक्सर देखा ही होगा ना, वो पुरानी तस्वीरों को किस तरह नहीं बना देता है।
हाँ, मैंने अपने मरहूम बाप की दुकान को बेच डाला और फिर सरोज के साथ जो मेरे स्कूल के जमाने का दोस्त था शराकत कर ली। तय ये हुआ कि तीन हिस्से उसके होंगे और तीन मेरे, लेकिन जब साइन करने का वक्त आया तो उसने छह हिस्से अपने नाम करवा लिए।
मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है, काफी होशियार है। क्या बात है उसकी?
फिलहाल तो उसकी हालत नाजुक है, ये वक्त होशियारी दिखाने का है।
देखो, हमारी जबान में ऐसे मुर्दाखोरी कहते हैं, जानवर भी तो ऐसे ही करते हैं। अब हर एक तो शेर नहीं हुआ करता ना, कुछ भेड़िए भी होते हैं, ये भी एक किस्म होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब हम मुर्दाखोर भी हो गए।
मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरोज रहे या मरे, चाहे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले ना मिले, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। हम दोनों का मामला अपनी जगह तय है, जब तक सरोज जिंदा है उसके फिंगरप्रिंट से फायदा उठा लो। आखिर को जिंदा और मुर्दा शख्स के फिंगरप्रिंट बहुत फर्क होता है। मेरे हिसाब से तो कल तक काम हो जाएगा, बस अब सिर्फ एक अंगूठा लगा सादा कागज रह जाता है।
ठीक है, मिल जाएगा।
अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, तुमने क्यों जहमत की?
अरे जहमत कैसी, ये सब कैसे हो गया?
पता नहीं।
अब उनकी हालत कैसी है?
डॉक्टर ने कहा है कि शदीद ज़हनी दबाव की वजह से कोमा में चला गया है, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है।
शायद मेरी गलती है, मैंने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था, वो मेरी वजह से तंग आ चुके थे।
नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, असली कसूरवार तो मैं खुद हूं। मैं अपने कामों में इस कदर गुम हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया। इन 20 सालों में जब मैं स्कूल की प्रिंसिपल थी,
एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे के वालिदैन ने ये शिकायत की हो कि मैडम मेरे बच्चे की नाक से खून क्यों बह रहा है। तुम तो खुद मेरी स्टूडेंट रह चुकी हो, अच्छी तरह जानती हो ना। मेरी पूरी कोशिश यही रही कि अच्छा माहौल फराहम कर सकूं। मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा स्कूल के बच्चों की नजर हो गए। मैं इन सबको अपने बच्चों की तरह अजीज रखती थी, इनमें से किसी एक से भी गाफिल नहीं रही सिवाय एक के, वही जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वही जो मेरे दिल की धड़कन। मैं अपने कामों में इतनी गुम हो गई कि मैं अपने सरोज को बिल्कुल ही भूल बैठी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, पैसा कहां से आता है, कहां पर खर्च करता है, पता नहीं सही रास्ते से या गलत रास्ते से। किस तरह मुमकिन है कि एक कंपनी का और साथ ही नई मॉडल की गाड़ी का मालिक बन बैठे, शादी करें, फिर तलाक दे दें, बेहिसाब किताब खर्च करें, पता नहीं। बहरहाल मैंने कभी उसे आमदनी का एक पैसा भी जिंदगी भर खर्च नहीं करने दिया। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया।
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
के लिए यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में डाइस पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता, ए लोगों, ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने तुम सबको गुमराह किया है, तुम सबको धोखा दिया है, तुम सबको फरेब दिया है, बस सिर्फ 5 मिनट फिर मुझे सुकून मिल जाएगा।
सिर्फ 5 मिनट में क्या किया जा सकता है,
लेकिन मेरे लिए तो बस 1 ही मिनट काफी होगा। मुझे यकीन है इतनी मोहलत में मैं अपनी माँ को राजी कर लूँ।
मुझे तो दोबारा नई जिंदगी चाहिए। अभी तो मैंने सही से जिंदगी भी नहीं शुरू, क्योंकि मैं अहमक हूँ। पता नहीं क्यों मैंने खुदकुशी की थी।
काश मैं सिर्फ चंद लम्हे अपनी बीवी से बात कर सकता, मुझे यकीन है वो मेरी निजात का सम्मान कर सकती।
मुसीबत और आलाम के वक्त तो इंसान ऐसी बातें बहुत करता है, लेकिन जैसे ही मुसीबत और बला टल जाती है वो अपनी बात से फिर जाता है।
आखिर आप इतने मुतमईन कैसे हैं? हम सब ने अपनी अपनी रुदात सुनाई सिवाय आप।
यानी पूरी जिंदगी में आपसे कोई गुनाह सरसख्त नहीं हुआ?
खुदा का ऐसा कौन सा बंदा है जिससे कभी कोई गुनाह ना हुआ हो? मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें लोगों की तरह हूँ, तो जहाँ जहाँ लग्जिशों के इम्कान होते थे और जिनसे मुझे इज्तनाब करना चाहिए था मैंने किया, और जब कोई खदा सरसद हुई मैंने तौबा कर ली, और अब भी मैं खुदा के करम और बख्शिश का उम्मीदवार हूँ, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं।
मुझे यहाँ से ही जहन्नम की तपिश महसूस हो रही है, मेरा तमाम बदन जल रहा है, मैं जल रहा हूँ, देखो मैं जल रहा हूँ। अगर मशीयत इलाही हुई तो हम में से हर शख्स दोबारा दुनिया में लौट जाए तो क्या हम?
अगर मशीयत इलाही हुई तो हम में से हर शख्स दोबारा दुनिया में लौट जाएगा,
क्या हम मरे नहीं?
तो क्या हम लोग मरे नहीं है, बताएं?
अभी नहीं।
खुदा रब कुछ तो बताएं।
लेकिन इस वक्त हम सब कोमे में हैं, किसी भी लम्हे हमें मौत आ सकती है।
नहीं मरे हम अभी तक।
यानी मुमकिन है कि हम दोबारा वापस लौट जाए?
हाँ, मुझे भी माफी मांगनी है। मैं जल रहा हूँ, मुझे माफी मांगनी है।
कुछ नहीं मालूम, जो खुदा चाहेगा वही होगा, खुदा ही जानता है।
लेकिन अगर हम में से किसी एक शख्स को भी खुशकिस्मती से होश आ जाए तो हम सबके लिए काफी होगा। इसी तरह से वो मुश्किल में गिरफ्तार हम बाकी लोगों की निजात का सामान कर सकता है।
अगर हम में से किसी ने वापस लौट के ऐसा ना किया तो क्या जमानत है इस बात की कि वो हमारी निजात का सामान करेगा?
हम उससे वादा ले सकते हैं।
हम सब इस काम को अंजाम देने के लिए कसम खाते हैं।
लेकिन हम सब इस कसम को तोड़ सकते हैं या भूल सकते हैं?
आप क्या कहते हैं?
ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि हम कसम खाएं बेहतर होगा हम पहले अपने दिलों को पाक कर लें। और अगर हम में से किसी एक की नियत में जरा बराबर भी फितूर हुआ और वो अपनी सेहत को भूल जाने का इरादा रखता हो तो अदले लही का तकाजा है कि वो शख्स उस दुनिया में न लौटे, और जो वापस लौटे वो उस बदहद को भूल जाए।
कोई है जो इस बात से मुत्तफिक ना हो?
नहीं
नहीं नहीं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
डर क्यों गई आप?
आप इतना आहिस्ता से आए कि हम तो डर ही गए।
हाँ तो हॉस्पिटल में आहिस्ता ही आना चाहिए, अपनी आमद का ढंडूरा तो नहीं पीटूंगा।
जीते रहो, तुम्हें भी जहमत में डाल दिया।
कैसी बातें कर रही हैं, आपका इससे ज्यादा हक बनता है हम पे। कैसी तबीयत है अब इसकी?
डॉक्टर ने कहा है कि कल की निस्बत आज उसका रिस्पॉन्स काफी बेहतर है। खुदा का शुक्र है।
शुक्र है खुदा का। मैं अब फारिग हूँ, आप चाहें तो घर जाकर थोड़ा आराम कर लें। मैं यहाँ हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो आपको कॉल कर दूंगा, आप जाइए।
मुझे उसी की फिक्र लगी रही।
आप इन्हें ले जाएं, इन्हें आराम की जरूरत है, मैं यहाँ हूँ।
जी बिल्कुल मैडम, राजी साहब ये सब संभाल लेंगे।
ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम भी आराम कर लो, कल तक फिर आ जाऊं।
फिलहाल तो आप जाइए, जब तक मैं यहाँ हूँ आप खातिर जमा रखिए।
शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा जहमत नहीं देना चाहती,
ये तो मेरा फर्ज है।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। माफ कीजिए, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ?
जी नहीं।
वो मेरा भाई है।
नहीं जनाब, ये आईसीयू है ना कि होटल। सुबह आपकी वालदा भी आईसीयू में आई थी।
मेरी वालदा? मेरी वालदा
तो क्या प्रिंसिपल साहिबा, आपकी वालदा नहीं है?
क्यों नहीं?
वो भी सुबह आईसीयू में थी, इसलिए अब मुमकिन नहीं।
सिर्फ एक मिनट के लिए प्लीज।
मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती, उस दफा भी डॉक्टर गोदर्जी ने सिफारिश की थी लिहाजा।
सिस्टर, डॉक्टर गोदर्जी मेरे करीबी दोस्त हैं, सिर्फ चंद लम्हों के लिए।
ठीक है, मगर 5 मिनट से ज्यादा ना लगे।
ठीक है।